तो राग और द्वेष के व्यवहार में, राग और द्वेष के प्रसंग में भी राग और द्वेष का साक्षी चैतन्य है, उसकी याद का अगर अभ्यास हो तो ये साधक संसार पाश में रहते हुए भी संसार पाश से जल्दी मुक्त हो जाता है। ओम ओम ओम। ढाई घंटे पूरे हो चले हैं, अब आप लोग रिसेस कीजिएगा, 2:45 बजने की तैयारी है, ठीक 3:15 बजे के आसपास मिलेंगे। ओम ओम।
त्याग, आत्मज्ञान का विचार और प्राणों के स्पंदन का निरोध, ये चित्त को जय करने के उपाय हैं। चित्त की जय होते ही आदमी महाविजेता हो जाता है। ओम 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 ओम। वो जमाने में 1,000 रुपया स्वामी राम कृष्ण के लिए, 1,000 रुपये वाला दुशाला लाया कोई भक्त, 1,000 रुपये का दुशाला, तो उसकी चमक, उसकी तड़क भड़क, वो जमाने का 1,000, आज से तो 80 साल पहले की बात, 85 साल पहले, 90 साल पहले का बहुत बड़ा रुपया होता था। 1,000 रुपये वाला दुशाला, बोले इतना बढ़िया दुशाला किसको दूं किसको दूं। पात्र खोजते खोजते भक्त को हुआ कि रामकृष्ण देव को ही दें, वही पात्र है। रामकृष्ण देव को 1,000 रुपये वाला दुशाला उड़ा दिया, उन्होंने भी ओढ़ लिया, बड़े खुश हुए। अरे लेकिन संतों का जो खुशी है बाहर के वस्तु को पाकर, वो तो सती का सिंगार है। जय जय। संतों का जो बाह्य वस्तु और बाह्य उपलब्धियों को पाकर जो खुशी दिखाते हैं, वो तो सती का सिंगार है उनका। कैसा लगता हूं? देखो कैसा लगता हूं? थोड़ी देर तो घूमे, हाँ बड़े खुश हुए। फिर स्वात्म ज्ञान विचारणम, वहां पहुंच गए गाड़ी। क्या ये पहनने से तो कैसे लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ, ये तो देह अभ्यास हुआ, ये तो अहंकार जगा, ये तो ना समझी से। और एक बात सीधी है समझने की, सुंदर वस्तु अच्छी लगती, सुंदर वस्तु अच्छी लगती, जो सुंदर होता है वो अच्छा लगता है। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि हाड़ मास को सुंदर कर रहा है, भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि मिट्टी पानी और बकरी गाय भैंस के गंदगी का खाकर उनको इतनी सुंदरता देता कि गुलाब होकर महकते हैं। जय जय। रसो अपसु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्ववेदेशु शब्द खय पुरुषम निशु। उसका शाश्वत रस ऐसा है, जल में रस उसका है, तपस्वियों का तप वही है, ओजस्वियों का ओज वही है, पुष्पों में सुगंध उसी की है, पृथ्वी में पुण्यवान नंद वही है। भगवान परम सुंदर है और हम अविवेक से भगवान का सौंदर्य नहीं देखते, तभी अभिमान आ जाता है। अगर भगवान का सौंदर्य देखने की तरफ जाए सत्संग के द्वारा, तो अभिमान हट जाएगा और विनय आ जाएगा। रामकृष्ण कहते हैं कि अरे ये तो 1,000 रुपये वाला दुशाला ओढ़ने से तो अभिमान आ गया, लग गए दुशाला को चीरने फाड़ने कि क्या है, चमकीले सूत के धागे हैं और क्या है, ऊनी और रेशमी और चमकीले सूत के धागे और पांच भूत के सिवा तो छठा है नहीं इसमें, पांच भूत ही तो है। तोड़ फोड़ दिया। दूसरे भक्तों ने जाके बताया देने वाले का कि गुरुजी ने तो ऐसा कर दिया, बोले उचित ही किया है, हम लोगों को सबक भी सिखाया है और उनकी अनासक्ति है। चित्त जब निरोध होता है तो फिर देव की पूजा बाहर करने का परिश्रम नहीं पड़ता है, और देव को खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गुरु को भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु तो संयोगवश मिल ही जाते हैं। प्राणायाम आदि से चित्त निरुद्ध होता है। संसार की हठीली आसक्ति, हठीली विषय लोलुपता, परिणामों के हठीली आकांक्षा, वो हमारे चित्त को एकाग्र होने में बाधा करती है और वो हमारे को असंतुष्ट रखती है। गीताकार ने कहा संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। योगी सतत संतुष्ट रहता है जिसकी चित्त की वृत्तियों का पेट खाली हो गया। आकांक्षाओं का तो आकांक्षाओं से उसका पेट भरता है। जिसकी चित्त की वृत्तियों का पेट खाली हो गया। मैंने दोपहर वाले सत्संग में कहा था कि भोगी की वृत्ति में भोग भरा है। अब भोग त्रिपुट से होता है, देखने का वस्तु हो, देखने की इच्छा हो और देखने का साधन आंख हो, तब ये दृश्य का भोग हुआ। सिनेमा आदि, कोमल सुंदर आदि जो भी है। सूंघने का विषय नाक, सूंघने का वस्तु हो, विषय हो गंध, साधन नाक हो और सूंघने की इच्छा हो तब सुख मिलेगा। अब या तो सूंघने का परफ्यूम आदि उड़ जाएगा, या तो नाक कभी बंद हो जाएगा, या तो सूंघने की इच्छा सतत रहेगी नहीं। ये त्रिपुटी है, घड़ी भर के लिए इच्छा आती फिर बदलती। इसलिए भोग में सतत सुख देने की सामर्थ्य नहीं, चाहे कोई भोग हो। दुनिया की सब वस्तुएं जुटाकर भी सतत संतुष्ट भोगी नहीं रह सकता। संतुष्ट सततम योगी, त्रिपुटी जन्य सुख इस लोक का तो क्या, अतल का, वितल का, तलातल का, नाग कन्याओं के लोक का, रसातल का, महातल का, भूलोक, भूलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, स्वर्गलोक आदि का सब सुख मिलाकर एक आदमी को दिया जाए, फिर भी सतत संतोष उसको नहीं हो सकता। लेकिन चित्त के प्रसाद से आदमी को सतत संतोष मिलता है। संतुष्ट सततम योगी, क्षण भर का संतोष तो चूहों को भी मिल जाता है। शराबी लोग शराब पी के सो गए और बिल में से चूहा निकला। शराब की कुछ ढुली हुई बूंदें चूहे ने चख ली, हाँ चढ़ गया नशा, दो पैरों के बल खड़ा हो गया चूहा। आओ मूछों को हेटते हुए, बुढ़ा बिल्ली की बच्ची को कहाँ रहती है। थोड़ी देर के लिए तो संतुष्ट हो गया, बड़ा आदमी हो गया, लेकिन वो कुछ बूंदों का शराब की बूंदों का निर्भयता थी, आत्मनिर्भयता नहीं। ऐसे ही बाह्य शराब कुटुंबियों की, साथियों की, बोतल की या और कोई शराब, खाली बोतल की नहीं होती, सत्ता की भी शराब होती है, सौंदर्य की भी शराब होती है, धन की भी शराब होती है, मित्रों की भी शराब होती है। तो इस शराब से जो आदमी थोड़ी देर के लिए निर्भय हो गया, संतुष्ट हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चित्त के निरोध से जो संतोष मिलता है वो आदमी सतत संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझी में मन बुद्धि जिसने उस गुरु तत्व में अर्पित कर दी, इष्ट में अर्पित कर दी। इसी पंडित ने रामकृष्ण को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, देवी को जो अर्पण करना है भोजन वो आप खा रहे हैं, देवी को जो फूल चढ़ाने वो आप अपने सिर पर रख रहे हैं, ये देवी की पूजा 10 मिनट में होती है और घंटा भर तो पूजा में लगा रहे हो, ये सब क्या है? आप कुछ नियम भी समझो, कुछ शिष्टाचार, कुछ सदाचार। अब देवी की पूजा करना है, आप पुजारी नियुक्त हुए हो, देवी तो बेचारी भूखी मर रहे और तुम खाए जा रहे हो, देवी को तो श्रृंगार किया नहीं हो, तुम्ही ने श्रृंगार कर लिया। बोले भाई, जब तक देवी मूर्ति में दिखती थी तब तक मूर्ति का करता था, लेकिन अब देवी का चिंतन करते करते मैं खो गया हूँ। मैं अब देखता हूँ कि देवी के सिवा और कुछ है ही नहीं, सारा विश्व ही देवी देवी है। जब इतना नजीक देवी मिल रही तो इतना हाथ लंबा करके बाहर क्यों खोज। ये है भक्ति के मार्ग से उस प्रसाद की प्राप्ति। चाहे भक्ति के मार्ग से प्रसाद की प्राप्ति करें, चाहे योग के मार्ग से करें, चाहे विवेक वैराग्य के मार्ग से करें, चाहे तत्व विचार के मार्ग से करें, लेकिन वो प्रसाद की प्राप्ति होनी चाहिए। और जब तक मानो न मानो ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, खुशी इंसान की जरूरत है, शाश्वत सुख इंसान की जरूरत है। सुख को और जीवन को अलग करना असंभव है। सुख जीवन की मांग है, सुख जीवन का हिस्सा है, बिना सुख के जीवन हो नहीं सकता। और बिना जीवन के सुख हो नहीं सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख को आप जीवन से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मजे की बात है कि सुख की मांग तो बनी रहती है, सुख की पहचान नहीं है। सुख की मांग है, सुख की पहचान नहीं है। इसलिए सुख भी मौजूद है, मांग भी मौजूद है, पहचान नहीं है। इसलिए सोने के बदले पीतल लेके आ जाते हैं हम लोग, और फिर देखते हैं कि नहीं तो फिर और बदलो तो और पीतल का और नमूना मिल जाता है, और मिल जाता है। सुख का मतलब है कि एक बार अमृत की पहचान क्या है कि जिसमें विष मिला दो तो भी अमृत हो जाए। गंगा जल की पहचान क्या है कि नल का पानी मिला दो गंगा जल हो जाए, नाले का पानी भी मिला दो। समझता तो भक्त वृत्ति में स्मृति भरता है, योगी वृत्ति का पेट खाली करता है, इसलिए उसकी वृत्ति निरुद्ध हो जाती है। और वही योगी परमात्मा तत्व का, प्रभु तत्व का विचार करके, अपने मैं का विचार करके, वृत्ति जिस चित्त में उत्पन्न होती है उस चित्त को भी अंतःकरण के आधार से चलता हुआ देखता है, इसलिए मूल तत्व का बोध हो जाता है उसको। गीता के सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक है, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् एतद् सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् वेति माम तत्वत। हजारों मनुष्यों में कोई विरला सिद्धि के तरफ जाता है। कई मूर्ख लोग तो ईंट चूना लोहा लकड़ मिलता है, घर नु घर से, वाड़ी से, गाड़ी से, लाड़ी से, लीला लहर से, शकोर फूटेल उतारा काका लीला लहर से, वाड़ी है, गाड़ी है, लीला लहर है, दो फैक्ट्री है, कई तो उसी में बुद्धू बन जाते हैं। इसी चीजों को सुख का साधन समझते। मैंने बताई थी अजमेर के, अजमेर में कथा बताई थी, यहां भी दोहराई थी। ऐसा ही एक बड़ा सुखी साहब था, दो नंबर के, और जहां हराम का पैसा ज्यादा आता है ना तो बुद्धि खिन्न भी जल्दी होती। और साहब अपना कार सजा के ऑफिस में से तो जल्दी आ गए थे, और मिसेस को कहा कि नई पिक्चर लगी है चलो देखने को। अब मिसेस ने भी वहां उसी रंग का ब्लाउज, सामग्री तो सब थी, लेकिन एक चार पैसे की कम वक्त चप्पल ने परिवार का खाना पीना आराम कर दिया। ये है भोगियों का सुख, जयराम जी की। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। और है अक्ल वाले और खोज रहे चप्पल, ना ना है अक्ल का दीवार। दुख की परिस्थितियां आ जाए तभी भी तुम्हारे चित्त में वो ज्ञान की धारा, वो सुख की धारा का प्रभाव जमा रहे। जैसे अमृत पिया हुआ आदमी को विष नहीं मारता, ऐसे जिसने सुख पा लिया है उसको दुख दुखी नहीं कर सकता। हकीकत में हम लोगों ने सुख पाया ही नहीं, हम लोगों ने पाया है हर्ष। हर्ष ये मन का विकार है, जितना हर्ष पाते उतना शोक होता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जहाँ बजती है शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं, वहाँ जहाँ फूटते हैं फटाकड़े वहाँ अग्नि भी होती। जयराम जी की। शहनाइयाँ बजी, बैंड बाजे बजे, तो फिर मातम भी तो हुए। भूल कर उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे हो गम की कतारें। जय हो। तो संसार का ऐसा कोई हर्ष नहीं है जो जवाबदारी, थकान और विनाश न ले आए। इसीलिए भोगी जो है सतत संतुष्ट नहीं रह सकता है। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, संतुष्ट सततम योगी। तो भोगी की वृत्ति में भोग भरा है। मैंने दोपहर के सत्संग में अर्ज की थी, त्यागी की वृत्ति में त्याग भरा है, तपस्वी की वृत्ति में तप भरा है, भक्त की वृत्ति में स्मृति का प्राधान्य है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब भजन सुमरण न होई। एक अपना है उसका पता तक नहीं लगाना, ये अक्ल का दिवाला है। ओम ओम ओम। तो भोगी अपनी अक्ल में भोग भरता है वृत्ति में, लेकिन जो तत्ववेता है वो वृत्ति जहां से उठती है उस परमात्मा को निहारने की कोशिश। वेदव्यास जी को वो महासंत ने कहा कि आप मध्येश्वर की पूजा करिए। मध्येश्वर माना आदि और अंत के बीच में जो रहता है, और जो बीच में रहता है ना वो आदि में भी होता है अंत में भी होता है। भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में क्या रहता है? वर्तमान। अच्छा, तो वर्तमान काल जो है ना महाराज, वास्तविक में वर्तमान काल ही काल, तो वास्तविक में वर्तमान काल ही है। पीछे की कल्पना करो तो भूत, और आगे की कल्पना करो तो भविष्य। भूत और भविष्य की कल्पना भी तो वर्तमान में ही तो होगी। उस वर्तमान काल को भी जो निहारता है, वो काल का भी जो काल है, उस परमात्मा में विश्रांति पाना, ये आज के श्लोक का संकेत है। सत्संगो वासना त्याग। वासना जो जो उठे तो विवेक का उसे लगाम पहरा दो कि ये इच्छाएं कितनी इच्छाएं तो बिल्कुल अनर्गल होती है, बिन जरूरी होती है, और कितनी इच्छा जो होती है वो पूरी होना संभव नहीं होती, और कितनी इच्छा जो है वो सहज में पूरी होती है। नाहक हम लोग परेशान होते, कितनी इच्छाएं जो जरूरी है वो सहज में पूरी होती, और जो बेजरूरी है वो कुछ पूरी होती, और बाकी की कुछ ऐसे ही रह जाती। फिर भी आदमी इच्छाओं के पीछे अपने चित्त को दौड़ाता रहता है। तो ये परिस्थितियों की, विषयों की हठीली मांग हमारे चित्त को संतुष्ट नहीं होने देती। हमारा आग्रह जो है हमको ध्यान में विघ्न करता है। आत्म साक्षात्कार में हमारी इच्छाओं की जो पकड़ है वो हमें परेशान करती। कई लोग फरियाद करते हैं कि ध्यान नहीं लगता है। क्यों ध्यान नहीं लगता है? कि हम संसार में रहकर, संसार के होकर भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान नहीं लगता। हकीकत में हम भगवान के होकर और भगवान में ही बैठकर भगवान का ध्यान करें तो भगवान का ध्यान टूट नहीं सकता है। तो अब अभ्यास करिए। सुबह उठते हैं, लंबे लंबे दो चार पांच श्वास ले लो, नींद के बाद, ध्यान भजन के बाद नहा धो लिए और फिर साधन भजन करते हो, उस समय श्वास ले लो। श्वास लो तो ईश्वर की कृपा भरो, और श्वास को छोड़ो तो मैंने चंचलता छोड़ी। अब जो कुछ हमारे मन में आएगा वो प्रभु का ही होगा। ईश्वर के सिवा और कुछ हमारे मन में आ जाते, अतिरिक्त नहीं आ सकता। हम अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस समय भगवान के सिवा और हमारे मन में कोई बात नहीं आएगी। अतः जो बात आएगी वो भगवान की भेजी हुई होगी या तो भगवान मय होगी। भगवान के सिवा और कोई नहीं आ सकता। दम फूट कर लो, पानी छांट लो, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व संगतो विवा स्मृति पुनरीकाक्ष अभ्यंतरम वायम सुचि। जो भगवान पुनरीकाक्ष का चिंतन करता है वो पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, जैसी भी अवस्था में हो, उसका अभ्यंतर बाह्य सुचि, वो पवित्र ही है। परमात्मा का चिंतन, ऐसा परम परमात्मा का परम पवित्र चिंतन करके ये संकल्प करो कि अब जो हमारे अंदर विचार आएगा वो पवित्र ही होगा, वो ईश्वर का ही होगा। फिर आप सेवा पूजा कर रहे हो, कोई भी विचार आए समझ लो ईश्वर का विचार है। हम हटाने में लगते तभी भी ध्यान नहीं लगता, और उस विचार में खो जाते तभी भी नहीं लगता, लेकिन उस जो भी विचार आए उसको ईश्वर की मोहर लगा दो। तो ये भी एक तरीका है चित्त को प्रसाद प्राप्त कराने का। जो भी विचार आएगा हमारा परमात्मा का ही होगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से चित्त फुरता है। जो भी विचार है भगवान का है। फिर उस समय जो भी विचार आ जाए आप समझ लेंगे मेरे प्रभु का भेजा हो, मेरे प्रभु का, मेरे प्रभु का। तो विचार अनेक होंगे, प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का, मोहर एक की एक होगी। महाराज उन विचारों का महत्व घट जाएगा और प्रभु की मोहर रह जाएगी। जयराम जी की। महापुरुषों ने न जाने क्या क्या नुक्ते आजमाए, लेकिन लगन जिसको लगी है वो करते हैं। तो मनुष्यों में हजारों मनुष्य तो इन तुच्छ चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं। कोई कोई भगवान के रास्ते चलते हैं, थोड़ा बहुत चल के तुष्टि आ जाती है, थोड़ी वाहवाही होने लगती है, थोड़ी वस्तुएं मिलने लगती है, थोड़ा यश मिलने लगता है, उसमें रुक जाते हैं। जब उससे आगे बढ़ते तो अपयश विरोध होने लगता है, तो उससे भाग के छोड़ देते। उससे कोई आगे निकलता है तो रिद्धि सिद्धि आने लगती है, उसमें फंस जाते। उससे कोई आगे निकलता है महाराज, तब वो चित्त का पूर्ण प्रसाद परमात्मा का साक्षात्कार होता है। चलो चलो सबको कहे विरला पहुंचे, कोई माया कामिनी बीते घाटी दोई। कबीर जी कहते हैं माया तजना सहज है, घर बार छोड़ दिया हो गए फकत, हो गए त्यागी बाबा, लेकिन अंदर में त्यागी पने का भी भाव न रहे, ये सावधानी करनी चाहिए। माया तजना सहज है सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। ये मान बढ़ाई जो ईर्षा है वो और भी गहरी है, माया भी छूट जाती, पत्नी भी छूट जाए, ब्रह्मचारी भी हो जाए, कंचन कामिनी दोनों छूट जाए, फिर भी मान बढ़ाई और ईर्षा ये गहरी रहती। रामकृष्ण कहते थे कि साधक को साधु को लोकेशना ये आखिरी विघ्न है। श्री राम सब हमारे लिए अच्छा अच्छा बोले, सब हमारी प्रशंसा करे, हमारी निंदा न हो, हम दुनिया में अपना कुछ नाम रख के जाए, ये बहुत सूक्ष्म आखिरी विघ्न होता है। इसलिए भगवान को कहो कि प्रभु अब जो विचार आएगा हम तुम्हारा ही मानेंगे, हम मेरा मुझ में कुछ नहीं, हमको अपने मैं को हटा दो और ईश्वर को साक्षी रखो, तो फिर धीरे धीरे ईश्वर की मदद मिलेगी। मन चालबाज ने अपना चालबाज मन ने मनुभाई आपने युगो थी आपने क्षेत्र, एट्ले आप एक पुरुषार्थ अपने थाकी जाइ, एट्ले अवारनवार ईश्वर की सहाय लेवी, अवारनवार अंतर्यामी परमात्मा ने प्रार्थना करवी, तो अवारनवार सहाय ने प्रार्थना मलती रहे, छता ते डगी पड़ो तो पुरुषार्थ छोड़ो नहीं, कारण के लाखों वर्ष लाखों जन्मों नो अभ्यास छे लपसी पड़वानो, तो आ एक जन्म में एक बे वार पांच वार लपचा तो चिंता करवानी नहीं, लपसना या गिरना कोई पाप नहीं है, असावधानी तो है, लेकिन लपस के गिर के फिर न चलना ये प्रमाद है, ये पाप। तो कभी कभी साधकों के जीवन में लिया हुआ नियम पूरा नहीं होता, उसलिए दुखी हो जाते हैं और अपने को अयोग्य मानने लगते हैं। कभी कभी न चाहते हुए काम क्रोध के आवेग में वे बह जाते हैं, तो अपने को कामी क्रोधी और लाचार और अनधिकारी मानकर उत्साहहीन हो जाते हैं। लेकिन उन साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर जो गलतियां दिख रही है, काम क्रोध की, लोभ की, चिंता की, आलस्य की, जो भी गलतियां दिख रही है, उसको गलतियों को देखकर आप निराश नहीं होना, क्योंकि ये तो खुशखबरी है। अपनी गलती तो दिखती है ना, अपनी गलती, गलती करना तो भूल है लेकिन गलती न देखना और बड़ी भूल है, गलती कोई दिखाए और न मानना वो तो महाराज त्यागियों का बाप है। श्री राम नरेंद्र आंख में काजल पहनते हैं तो आंख को नहीं दिखता है, जब आंख से दूर होता है ना तब दिखता है, ठीक है भाई। ऐसे ही गलती अगर आपके साथ मिली हुई होती तो आपको गलती नहीं लगती, तो गलती जब अपने में होती है ना तो नहीं दिखती। श्री राम क्या समझे, आंख में जब काजल होता है ना गहरा तो नहीं दिखता है, आंख से दूर होता है तब दिखता है। ऐसे ही जो पापी हैं, अपराधी हैं, उनको अपना अपराध नहीं दिखता जल्दी से, हीरा तो क्या है, सिनेमा देखी तो क्या हो गया यार, जेब काटी तो क्या है, हमारे धंधा करते कोई भीख तो नहीं मांगते उनको वही अच्छा लगता होगा, जो गलती से भरे हुए हैं उनको ये दुष्कृत्य गलती नहीं दिखेंगे। तो साधक को गलतियां दिखती है अपनी, भक्त को, शुद्ध हृदय वाले को, और गलतियां दिखती है तो एक गलती और कर लेता है कि अपने को अयोग्य मान लेता है, ये बड़ी गलती है। अपने को अयोग्य मानने से अपनी योग्यता क्षीण हो जाती, गलतियां दिखे तो भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु तुम्हारी कृपा से गलतियां दिख रही, और होता है अब हो सकता है कि मेरे में नहीं है, ये मन में है, मन में गलतियां हैं उसलिए दिख रही है, अब मैं शुद्ध हो रहा हूं, तेरी कृपा है, वाह प्रभु वाह, गलतियां और प्रभु को वाह वाह करो, तुम्हारा मन शुद्ध होने लगेगा। उसका मतलब ये नहीं कि गलतियां करते जाओ जय जय, लेकिन हताश और निराश के विचार, अथवा तो अपना अधिकार नहीं है, अपने गृहस्थी है, अपना दम नहीं है, भाई भाई अपना धम नहीं, भगवान के रास्ते चलना अपना धम नहीं, अपना तो पेड़ा खाने का धर्म है, ये पेड़ा आ गया, अपना अधिकार नहीं, मनुष्य मात्र का मुक्त होने का अधिकार है। मैंने पहले भी अर्ज किए थे कि किसी गडरिया को, बकरा चराने वाले को प्रिंसिपल बनाया गया, अरे प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, एकदम बरस पड़े तो भी अपने पटा वाला को कलेक्टर नहीं बना सकता, प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हो जाए अपने पर्सनल पटा वाले पर तो भी उनको कलेक्टर नहीं बना सकते, क्यों? क्यों? कलेक्टर बनने की आईएएस ऑफिसर होने की योग्यता चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी तो ऐसी गलती नहीं करता ना कि पटा वाला को कलेक्टर बना ले, तो भगवान गलती कैसे करेंगे? भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है कि मोक्ष का अधिकारी, मनुष्य जन्म ही मोक्ष के अधिकारी को मिलता है। यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल यही विषय विलास करके आहा हो करके दुखी सुखी होके जिंदगी बर्बाद कर लिया। नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल, ये देह की प्राप्ति का फल ये नहीं कि विषय प्राप्त कर लिया आहो कर दिए कह देता। नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए है। तो भगवान ने तो हमको मुक्ति का अधिकारी बना लिया। मैंने अगले बुधवार को शायद कहा था, मैं आज भी कहता हूं, आपसे पूछूंगा आज कौन सा दिन है तो आप बोलोगे रविवार है, मैं बोलता हूं झूठी बात है आज सोमवार है, नहीं स्वामी जी रविवार है, मैं कहता हूं नहीं सोमवार है, नहीं बाप जी रविवार है, तो कैसे बोलते हो आप रविवार है? रविवार को घूमता फिरता देखा था क्या कहीं बाजार में कि रविवार है आज? नहीं बाबा जी, पंचांग में देखा है, ज्योतिष का पंचांग में, ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र की बात मानते, पंचांग की बात मानते, तो वेद की बात क्यों नहीं मानते? ज्योतिष की बात मान के पंचांग की बात मान के बोलते रविवार है, तो वेद कहता है ममैवांशो जीवलोके, शास्त्र कहता है ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, गीता कहती है आप सनातन है, आपका आत्मा और परमात्मा एक है, आपका आत्मा अजर है अविनाशी है, तो शास्त्र की भी बात मानो। तो जो आदमी अपने को चैतन्य सनातन शाश्वत ऐसा मानता है वो ऐसा ही साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है, और जो अपने को पापी पापी मानता है, दुखी मानता है, पापी मानता है, वो आदमी दुखी रहता है। ईश्वर पाना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको ईश्वर पाना कठिन नहीं है ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलना कठिन हो जाता है। हकीकत में तो परमात्मा का त्याग करना कठिन है, परमात्मा का त्याग करना असंभव है। ऐसा कोई माई का लाल हो जो भगवान का त्याग करके दिखावे? हो जाए खड़ा बोले हम भगवान का त्याग करते हैं, भगवान का त्याग करने करके भी खड़ा भी हो जाएगा तभी भी भगवान की सत्ता से खड़ा होगा, तो त्याग क्या किया? अब मैंने भगवान का त्याग करा ये बोलेगा भी तो भगवान की सत्ता से? अरे महाराज मर भी जाएगा तभी भी उसके देह का त्याग करेगा, उस भगवान का त्याग नहीं कर सकता, इतना वो साथ में। लेकिन जैसे मत्स्य पानी में डूबा ही रहता है, ऐसे ही जो संसार के विचारों में डूबे ही रहते हैं ऐसे विषय अंध लोगों के लिए भगवान कठिन हो गया, शांति पाना कठिन हो गया, मोक्ष पाना कठिन हो गया। जैसे मत्स्य पानी में ही डूबा रहता है ना मछली, ऐसे ही जो कल्पनाओं में डूबे रहते हैं उनके लिए ईश्वर कठिन है, नहीं तो कठिन नहीं है। परमात्मा पाना कठिन नहीं है, परमात्मा तो अपना आपा है बाबा। आप छोड़ते 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 जाओ, जिसको न छोड़ सको वो भगवान है, और जिसको छोड़ दो वो माया, वो मुसीबत। जिसको आप त्याग सकते हैं वो सब मुसीबत है, जिसको आप नहीं त्याग सकते हैं वो परमात्मा है। अभ्यास करो, नदी किनारे चले जाओ, किसी आश्रम में चुपचाप बैठो, इसको भी छोड़ सकता हूँ, इसको भी मन भी बुद्धि भी शरीर भी, अंत में शरीर भी छूट जाएगा। माया को नहीं छोड़ सकते, उस माया को खोजे तो देखो वो अवर्णनीय अद्भुत सामर्थ्य है उसमें। अभ्यास नहीं है उसलिए कठिन लगता है, और लोग संसार के प्रॉब्लम पूछते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं ऐसा करना ऐसा करना। भैया हम तो ऐसी चीज देना चाहते हैं गुरु महाराज की कि आपको फिर मांगना न पड़े, औरों को देने का सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट हो जाए, हम वो चीज देना चाहते।